क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल वायु सुगंध समेत मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली, भजले अरिहंत अरी रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। नमो अरहंताणं पद, ज्ञान का, रहस्य का, साधना का, तपस्या का, ध्यान का अलौकिक भंडार है। इस पद में सात प्रकार के अरहंतों को नमस्कार है। सात अरिहंतों में 24 तीर्थंकर भी हैं, भरत, बाहुबली, श्री राम, हनुमान, जीवंधर कुमार, प्रीतिंकर कुमार, सारे गणधर समाविष्ट हैं। अनेक ऐसे केवल ज्ञानी भी हैं जो मूक है, अर्थात वैखरी रूप, जो इतर मान्यताओं में वर्णन आता है। कि वाणी के चार स्तर होते हैं और उनमें जो अंतिम स्तर है, मुख से निकलने वाले वचन, उसको वैखरी कहते हैं। वो तो जिनके मुख से वाणी खिर नहीं सकती, वैखरी प्रकट नहीं होती, वे मूक केवली हैं। कुछ कल्पना से बाहर की बात लगती है कि जिनका ज्ञान सर्वोत्कृष्ट है, लेकिन जो बोलते नहीं है, शांत समुद्र की तरह निस्तरंग रहते हैं, वे मूक केवली नमो अरिहंताण में नमस्कृत होते हैं। और उपसर्गों को जीतकर जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसे उपसर्ग केवलियों को भी नमो अरिहंताण में अपन नमस्कार करते हैं। उनमें पार्श्वनाथ स्वामी हैं और अन्य भी अनेकानेक उपसर्ग केवली हैं। फिर कुछ ऐसे केवली हैं, उपसर्ग केवली वो हैं जिन्होंने उपसर्ग में केवल ज्ञान प्राप्त किया, मोक्ष प्राप्त नहीं किया। केवल ज्ञान और मोक्ष के बीच एक कालावधि, उनकी आयु प्रमाण कालावधि अवशिष्ट है, बची है, तो उतने काल तक वो उपदेश करते हैं। ऐसे कई उपसर्ग केवली हैं जो केवल ज्ञान प्राप्त करके उपदेश करते हैं। उनमें प्रधान पार्श्वनाथ तीर्थंकर भगवान थे। उपसर्ग काल में ही केवल ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने फिर तीर्थकरत्व में विराजमान होकर, तीर्थंकर पद में स्थित रहकर 70 वर्षों तक लगभग धर्मोपदेश दिया। इसी भरत क्षेत्र के संपूर्ण आर्यखंड में विहार करते हुए सर्वत्र उन्होंने धर्मोपदेश दिया, दिव्य ध्वनि के माध्यम से। उपसर्ग केवली, फिर अंतकृत केवली, अंत यानी सब समाप्त हो जाएगा। अष्टौ कर्मणाम अंतः कृतः यैस्ते अंत कृतः। भयानक दुर्धर उपसर्ग को जीतकर जिन्होंने उतनी ही कालावधि में उपसर्ग इतना प्रचंड रहा कि उनकी आयु क्षतिग्रस्त हो गई, इतना बड़ा उपसर्ग हुआ उन पर कि उस उपसर्ग में जीवित रहने की संभावना नष्ट हो गई, और ऐसी स्थिति में भी उन्होंने शुद्धोपयोग में लीन रहकर उस उपसर्ग को जीता, और जितनी आयु शेष रह गई थी उतनी अल्पावधि में घाती कर्मों का भी क्षय किया और अघाती कर्मों का भी क्षय कर दिया और मोक्ष चले गए। वे अंतकृत केवली है। प्रत्येक तीर्थंकर के काल में दस दस होते हैं। संलेखना के समय जब उनका स्मरण करते हैं तो क्षपक उनके वृत्तांत को सुनकर, जिनकी संलेखना चल रही है ऐसे साधु व्याधिग्रस्त भी हो सकते हैं, वेदनाग्रस्त भी हो सकते हैं, वो अपनी वेदना को विस्मृत करके उन अंतकृत केवली के प्रति भाव विभोर होकर उनकी भक्ति में, उनके ध्यान में संलग्न हो जाते हैं। भगवान अरिष्ट नेमी जो 22वें तीर्थंकर थे, अपन सभी तीर्थंकरों के साथ नाथ शब्द लगाते हैं। नाथ शब्द जो है वो आदर सूचक शब्द है। वृषभ नाथ, मूल नाम उनका वृषभ तीर्थंकर था। सभी के नाम मूल तो उतने ही हैं जितने हैं, नाथ अपन आदर पूर्वक जोड़ करके बोलते हैं। अरिष्ट नेमी तीर्थंकर भगवान के काल में अपन अरिष्ट शब्द तो बोलते नहीं, नेमी और उसमें नाथ लगा करके नेमी नाथ बोलते हैं। उनके काल में भी जो 10 अंतकृत केवली हुए हैं उनमें से अपने सामने कुछ उदाहरण तो बड़े प्रसिद्ध हैं, जैसे युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, ये 3 पांडव कौंतेय थे, कुंती पुत्र थे, और इन्होंने शत्रुंजय गिरी पर, जिसको आज पालीताना के नाम से श्वेतांबर बंधु पुकारते हैं, घोर उपसर्ग पर विजय प्राप्त करके अल्प कालावधि में केवल ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त किया। अंतकृत केवली उपदेश नहीं करते क्योंकि काल ही नहीं होता उतने। ये 3 हो गए, फिर एक गजकुमार मुनिराज का नाम भी आता, श्री कृष्ण जी के छोटे भाई थे, उन्होंने भी सोम शर्मा कृत प्रचंड उपसर्ग को जीता। उसने उनके सिल पर आग जला दी थी, आजू बाजू गीली मिट्टी लगा करके अंदर एक जगह बना ली और फिर लकड़ियां भर करके आग लगा दी थी, और जब वो अग्नि प्रज्वलित हुई, धधकने लगी, तब मुनिराज का सिर ऐसे फट गया था, लेकिन उन्होंने सबके प्रति क्षमा भाव धारण करके शरीर के नाश को अपना नाश न मानते हुए उपसर्ग को कर्म निर्जरा का प्रबल साधन बनाते हुए गोपुच्छा का गुणश्रेणी निर्जरा को प्राप्त किया और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त कर लिया। कथाएं थोड़ी अलग अलग आती है गज कुमार मुनि की, पर ये एक कथा हरिवंश पुराण में है। अंतकृत, इसी तरह एक धन्य कुमार नाम के मुनिराज हुए हैं नेमिनाथ भगवान के काल में। नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम में अपन उनको भी नमस्कार करते हैं, वो भी अंतकृत हुए हैं। उन्होंने जब से दीक्षा ली थी तब से कभी भी निरंतराय आहार नहीं किया था, उनको प्रतिदिन अंतराय होते थे। जब भी वो आहार को उठते थे तो अंतराय हो जाते थे। 9 महीने में उनका शरीर क्षीण हो गया था। किसी दिन वो वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे और राजा ब्रह्मदत्त, शिकार व्यसनियों की कथा में राजा ब्रह्मदत्त का नाम आता है, वो वहां से निकले और ऐसे एक दृष्टिपात किया उन पर उसको शिकार की धुन थी तो उनको छोड़ के चला गया, नमस्कार भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। और जंगल से जब लौटा एक भी शिकार हाथ नहीं लगा, तो उसने ऐसा कारण कार्य भाव लगा दिया। कई बार ऐसा होता ही है कि कोई अपना काम नहीं बनता तो अपन दोषारोपण किसी और पर करते हैं। उसने ऐसा विचार किया कि इसको देखने के कारण आज मेरा अपशकुन हो गया, मुझे एक भी शिकार नहीं मिला। तब वो आग बबूला होकर क्रोधावेश में उन मुनिराज पर उपसर्ग करता है। इतना भयानक उपसर्ग था वो कि वो अपने तर्कश के सारे बाण उन मुनिराज के शरीर पर चलाते हैं। मुनिराज का शरीर छलनी हो जाता है, लेकिन वो अपनी समता से विचलित नहीं होते और उस भयंकर उपसर्ग को जीतकर वो केवल ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। यहां एक कांटा चुभता है तो मुंह से सीतकार की ध्वनि निकलती है, मच्छर काटते हैं तो आसन स्थिर नहीं होता, मन भी स्थिर नहीं हो पाता। काल अभी इस प्रकार का चल रहा है, चौथे काल में भी रागियों की तो यही स्थिति थी। जब तक सुकुमाल स्वामी गृहस्थ थे तब तक वो भी कहां सहन कर पाते थे किसी पीड़ा को। उन मुनिराज ने इतने सारे बाणों के प्रहार को कैसे सहन किया होगा, सुनना बहुत सरल है। उन्होंने कैसे जीता होगा इसकी अपन कल्पना नहीं कर पाते। आचार्य रविशयन स्वामी ने पद्म पुराण में लिखा है कि चतुर्थ काल के उन मुनिराजों की जो साधना थी उसकी आज पंचम काल में कोई कल्पना नहीं कर सकता, कोई कल्पना नहीं कर सकता। कितनी बड़ी बात है, वो बड़े बड़े साधु तपस्वी महान आचार्य क्यों ना हो, इस काल के कोई भी उस काल के साधुओं की कल्पना नहीं कर सकते। भयंकर उपसर्ग को जीतकर वो अंतकृत केवली हो गए। उनको भी अपने नमो अरहंताण में नमस्कार करना सीखा है। और कभी वेदना की घड़ियां हो, कभी आकुलता अधिक हो, तो उनका स्मरण करके अपन अपनी आकुलता घटा सकते हैं कि हम उनकी भक्ति कर रहे हैं, हम उनके आराधक हैं, उनके उपासक हैं, जो ऐसे घोर उपसर्गों को जीत कर कर्मों का क्षय करने वाले हैं, निर्वाण को प्राप्त करने वाले हैं, वो धन्य है। और हम उनका स्मरण करते हुए अपने आप को धन्य मानते हैं। हे प्रभु, आप में कैसी शक्ति रही होगी कि आपने इतना बड़ा काम कर लिया। हम आपकी भक्ति करते हैं, आप थोड़ी शक्ति हमें भी दे दीजिए। हमारा उद्धार हो जाएगा। फिर एक अनुबद्ध केवली थे, एक मोक्ष यहां अन्य मुनिराज केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए, फिर वो मोक्ष गए एक अन्य मुनि केवली हो गए। इस प्रकार जो अखंड कड़ी होती केवलियों की, उसको अनुबद्ध केवली कहते हैं। उस श्रृंखला जैसे महावीर स्वामी के उपरांत गौतम स्वामी अनुबद्ध केवली थे, गौतम स्वामी के उपरांत सुधर्माचार्य अनुबद्ध केवली हुए, सुधर्माचार्य के उपरांत जम्बू स्वामी अनुबद्ध केवली हुए। ऐसे अनुबद्ध केवलियों को भी अपने नमो अरिहंताण में नमस्कार करते हैं। और अंतिम है समुद्घात केवली, जिनका वर्णन पूर्व सत्र में था कि जब मोक्ष का समय निकट आ जाता है, आयु पूर्ण होने को होती है, तो अघाती कर्म है, अभी घाती तो नष्ट हो चुके हैं, तो अघाती कर्मों में आयु थोड़ी बची हो, वेदनीय नाम और गोत्र कर्म की अवधि आयु से अधिक हो, कम तो कभी हो ही नहीं सकती। अधिक होती है तो उसको अरहंत भगवान सम करते हैं, आयु के समकक्ष कर देते हैं। एक प्रक्रिया होती है। आचार्य अपराजित सूर्य ने भगवती आराधना की टीका में लिखा है कि जैसे वस्त्र धो लिया, एकदम स्वच्छ हो गया वस्त्र, तो अब पानी निचोड़ा जाता है। पानी निचोड़ दिया फिर भी वस्त्र में गीलापन रहता है, उसको दूर करने के लिए वस्त्र को ऐसे फैलाकर फटकारा जाता है और सुखाया जाता है, क्लिप्स वगैरह लगाकर या ऐसी रस्सी पर डालकर उसको फैलाकर सुखाया जाता है। बस इसी प्रकार केवली भगवान अपनी आत्मा को फैलाते हैं। दंड समुद्घात, कपाट समुद्घात, प्रतर समुद्घात, लोकपूरण समुद्घात, और फिर वापस वो अपने आप को अपने शरीर प्रमाण कर लेते हैं। उसकी कालावधि 8 समय प्रमाण होती है और उतने में सारा काम हो जाता है। समुद्घात कर लिया, अघाती कर्मों की स्थिति आयु के बराबर हो गई। इसके बाद वो तीसरा शुक्ल ध्यान करते हैं, 13वां गुणस्थान पूरा हो जाता है, फिर चौथा शुक्ल ध्यान करते हैं, 14वां गुणस्थान पूर्ण करते हैं। चौथे शुक्ल ध्यान के अंत के 2 समय जब शेष रह जाते हैं, समय सबसे सूक्ष्म कालखंड को कहते हैं, तो उसमें प्रथम समय में वो यदि तीर्थंकर है तो 72 कर्म प्रकृतियों का क्षय कर डालते हैं। और द्वितीय समय में 13 कर्म प्रकृतियों का और क्षय कर डालते हैं। 72 और 13 85 प्रकृतियों का क्षय कर डालते हैं। 63 तो पहले ही समाप्त कर चुके थे, तो 63 और 85 कितनी हुई? 148 सब कर्मों का क्षय करके वो मोक्ष चले जाते हैं। जो मोक्ष चले गए हैं उनका वर्णन द्वितीय पद में होगा, नमो सिद्धाणम। अभी अरहंतों का, अरिहंतों का वर्णन चल रहा है, अरुहंतों का वर्णन चल रहा है। पार्श्वनाथ भगवान के उपसर्ग का वर्णन पूर्व सत्र में चला था कि उपसर्ग के समय, वैसे तो उपसर्ग 7 दिन चला है, तो उपसर्ग निवारण किस प्रकार से हुआ था ये चर्चा निकली थी। तो स्वयंभू स्तोत्र में अपन ने देखा था कि आचार्य समंत भद्र स्वामी ने लिखा है, पहले तो उपसर्ग का वर्णन किया प्रथम काव्य, तमाल नीलै ही सधनुष तड़िद गुणै ही, तमाल नीलै ही सधनुष तड़िद गुणै ही, प्रकीर्ण भीमा शनिवायु वृष्टि भी, बलाह कैर वैरी वशैरुपद्रुतो महामनायो न चचाल योगतः। तमाल के जैसे नील, तमाल कहते हैं तेंदुपत्ते को, तेंदुपत्ते का जो पेड़ होता है उसकी छाल काली होती है, तो वैसे वर्ण वाले बलाह कई बादल, और कैसे सधनुष उसमें इंद्रधनुष भी बन रहा है, ऐसे बादल, तड़ित गुणे और बिजलियां भी चमक रही है, तो इंद्रधनुष और बिजली ये उन बादलों के गुण हैं, श्याम बादल, और प्रकीर्ण भीमा शनि वायु वृष्टि भी, वायु और वर्षा के साथ आंधी तूफान के साथ जिन बादलों से भयंकर अशनिपात हो रहा है, वज्रपात विद्युतपात हो रहा है, बिजलियां गिर रही है, गाजे गिर रही है, और कैसे हैं वे बादल, वैरी वशई ही, जो कमट का जीव वैरी शंबर देव है उसके वश में है वो बादल, वो उन बादलों को प्रेरित कर रहा है भगवान को नष्ट करने के लिए। तो ऐसे बादलों से उपद्रुतः महामना, उपद्रव को प्राप्त हुए महामना पार्श्वनाथ स्वामी, यो कैसे थे, बोले जो योगतः न चचाल, इतने उपसर्ग होने पर भी अपने ध्यान से चलायमान नहीं हुए थे, विचलित नहीं हुए थे, और फिर उपसर्ग 7 दिन चलता रहा, कर्मों की बड़ी विचित्रता होती है। तीव्रोदय में जो कार्य नहीं होता वो कभी कभी मंदोदय में होता है, पुण्योदय तो दूर की बात है, अभी तो पाप के उदय की चर्चा है। पाप के तीव्रोदय में कुछ काम बिल्कुल अटके रहते हैं, मंदोदय में थोड़े थोड़े होने लगते हैं। तो अब 7 दिन उपसर्ग चला, इतने दिनों तक वो धरणेन्द्र पद्मावती कहां थे, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, इसका उत्तर ये है। पहली बात तो ये है कि ये पूछने वाले आप कौन होते हैं क्यों नहीं आए, उनको ज्यों ही संकेत मिला वो पहुंच गए। जैसे ही पार्श्वनाथ भगवान का कर्मोदय कुछ मंद हुआ। कुछ मंद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी उपसर्ग समाप्त नहीं हुआ। उपसर्ग समाप्त नहीं हुआ इसका अर्थ है अभी उदय तो चालू है असाता का, पर कुछ मंद हुआ तो उनका आसन कंपित हो गया। और आसन कंपित होते ही उन्होंने अविलंब अधोलोक से मध्यलोक की ओर प्रस्थान किया। नाग भवनों से निकलकर वो यहां भरत क्षेत्र आ पहुंचे। और आते ही साथ जो वर्णन है अभी उपसर्ग का उसको अपन देखते हैं अलग अलग शास्त्रों से, बहुत सुंदर वर्णन है। उपसर्ग सुंदर नहीं है, वर्णन सुंदर है। बृहत फणा मंडल मंडपेनयं स्फुरत तड़ित पिंगर चोप सर्गिणम जुगूह नागो धरणो धराधरम नाग संध्या तड़िदम बुदो यथा। स्फुरत तड़ित पिंग रुचा, प्रकाशमान बिजली की पिंग रुचा अर्थात कुछ पीली किरणों जैसे बृहत फणा मंडल मंडपीन, विशाल फणा मंडलों के मंडप द्वारा यम उपसर्गिणम जिन उपसर्ग को प्राप्त पार्श्वनाथ भगवान को धरणः नागः जुगूह। धरणेन्द्र नाम का जो नाग कुमार था, ये नाग कुमार देवों की एक जाति है, भवनवासी देवों के अंतर्गत इनकी परिगणना होती है। उन धरणेन्द्र ने उस फणा मंडप से जुगूह भगवान को पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया। जुगूह गुपू रक्षणी, ये धातु जो है ना ये रक्षा के अर्थ में आती है। और जुगूह लिट लकार का प्रयोग है, उन्होंने सुरक्षित कर लिया भगवान को। कैसे? तो आचार्य महाराज ने उदाहरण दिया, यथा जैसे विराग संध्या तड़िदम्बुदो। विराग संध्या का अर्थ होता सायंकाल के, तड़िदम्बुदो बिजली चमकाने वाले एक बादल द्वारा, धराधरम पर्वत घेर लिया जाता है। जैसे शाम के समय घनघोर बादल छा जाए और उनमें बिजली चमकने लग जाए तो वो बादल जैसे पहाड़ को घेर लेता है, वैसे ही धरणेन्द्र ने अपने फणा मंडल के मंडप द्वारा पार्श्वनाथ भगवान को ऐसे घेर लिया, सुरक्षित कर लिया। तो अब जो भी उपसर्ग हो रहा है उस कमठ के देव द्वारा, वो उपसर्ग सीधे पार्श्वनाथ भगवान पर न हो करके फणा पर आ रहा है, भगवान के ऊपर नहीं पड़ रहा। इतना कथन इसमें था। फिर अब दूसरा ग्रंथ अपन देख रहे हैं जिसमें थोड़ा और वर्णन आया है, आचार्य गुणभद्र स्वामी कह रहे हैं, महापुराण के अंतर्गत जो उत्तर पुराण वाला अंश है जिसमें तेईस तीर्थंकरों का वर्णन है, उसमें आचार्य गुणभद्र स्वामी उसी उपसर्ग का वर्णन करते हुए कहते हैं, व्यधात्तदैव सप्ताहान न्यन्यांश्च विविधान वधीहि। विविधान अक्षर स्पष्ट नहीं आ रहा, अपन उपसर्ग वाला काव्य पढ़ लेते, उपसर्ग निवारण वाला काव्य देख लेते। तम ज्ञात्वावधिबोधेन धरणीशो विनिर्गतः धरण्याः प्रस्फुरद्रत्न फणामण्डपमण्डितः। तम ज्ञात्वा, उस उपसर्ग को जानकर, कैसे जाना? अवधिबोधेन, अवधिक ज्ञान से जाना। अवधिक ज्ञान मिथ्या दृष्टियों को नहीं होता। तो इतने मात्र से ये प्रमाणित है कि धरणेन्द्र सम्यक दृष्टि देव थे। ये नियम है कि जन्मतः कोई भी भवनत्रिक के देव सम्यक्त्वी नहीं होते, पर्याप्तक होने के उपरांत सम्यक का योग बनता है तो सम्यक दृष्टि बनते हैं। तो यहां आचार्य कह रहे हैं कि वो सम्यक दृष्टि धरणेन्द्र तम उपसर्ग, उस उपसर्ग को अवधि ज्ञान से जानकर प्रस्फुरद रत्न फणा मंडप मंडित, प्रकाशमान रत्नों के फणा मंडप से मंडित। वो फणाओं का जो मंडप था वो रत्नमय था, रत्न रचित था, प्रकाशमान था। समंतभद्र स्वामी ने उसमें विद्युत कांति बताई ना, विद्युत कांति का अर्थ बिजली जैसी उसमें रोशनी थी उस फणा मंडल में। तो ऐसे, ऐसा जो धरणेन्द्र है, धरणीशः, ऐसे फणाओं के साथ धरणेन्द्र, धरण्याः निर्गतः विनिर्गतः, उस पाताल से, धरती से, भूमि से वे निर्गत बाहर आया, बाहर निकला। और बाहर निकलकर क्या किया? तो दूसरे श्लोक में है, भद्रम तमस्थादावृत्य तत्पत्नी च फणा ततेहि उपर्युच्चैः समुद्धृत्य स्थिता वज्रा तपच्छिदम्। तम भद्रम, उन भद्र पार्श्वनाथ भगवान को, पार्श्वनाथ मुनिराज को, भद्र का अर्थ होता है सभ्य प्रकृति, शालीन, सरल, विनम्र, शांत प्रकृति, उन पार्श्वनाथ भगवान को आवृत्य अस्थात, फणा मंडल से आवृत करके, घेर करके, अस्थात वहीं रहे, वहीं धरणेन्द्र वहीं पर स्थित हो गया। अस्थात का अर्थ स्थित हो गया। धरणेन्द्र ने इतना कार्य किया। अब आप देखिएगा कि स्वयंभू स्तोत्र में समंतभद्र स्वामी के वचन और उत्तर पुराण में गुणभद्र आचार्य के वचन सदृशता को प्राप्त हो रहे हैं। जो बात समंतभद्र स्वामी वहां कह रहे हैं वही बात गुणभद्राचार्य यहां कह रहे हैं, ठीक है। पर इसके बाद वाली जो घटना है उसका वहां स्वयंभू स्तोत्र में चूंकि भगवान की स्तुति चल रही है, उपसर्ग का विस्तार नहीं है वहां पर, वहां संकेत मात्र है। तो उसके बाद क्या हुआ वो वर्णन गुणभद्र आचार्य दे रहे हैं उत्तर पुराण में, क्या हुआ देखें अपन। तो ये जो दूसरा काव्य है 129वें काव्य में और 139वें काव्य में और 140वें काव्य में धरणेन्द्र ने क्या किया उसका वर्णन है, लेकिन 140वें काव्य के चार चरणों में से प्रथम चरण तक धरणेन्द्र का वर्णन है, तद उपरांत अपन आगे देखते हैं क्या है। तत्पत्नी च यानी और, अभी धरणेन्द्र का काम हो गया लेकिन अभी घटना पूरी नहीं हुई है, अपूर्ण है। तो आचार्य गुणभद्र स्वामी कह रहे हैं और तत्पत्नी, धरणेन्द्र की जो पत्नी है, अब धरणेन्द्र की पत्नी कौन है तो ईस्वी सन 942 इस कालखंड में, ये 10वीं शताब्दी का कालखंड है और जिस ग्रंथ के श्लोक अपन पढ़ रहे हैं वो 9वीं शताब्दी का ग्रंथ है। तो उस कालखंड के आचार्य पद्मकीर्ति ने पौमा वई तत्पत्नी, उस धरणेन्द्र की पत्नी का नाम पद्मावती सूचित किया है और उनकी आयु तीन पल्ल की भी बताई धरणेन्द्र की। तीन पल्ल की आयु यक्षों की नहीं होती, यक्षियों की नहीं होती, नाग कुमारों की ही होती है, इतना अपने को ध्यान रखना है। और तिलोय पंडित्ती में भगवान पार्श्वनाथ के जो यक्ष यक्षी हैं उनके नाम आए हुए हैं, तो यक्षी का नाम पद्मा है और नाग कुमारी का नाम पद्मावती है। अब इसमें अपन देखो वहां पर तिलोय पंडित्ती में पद्मा यक्षी नाम दिया है, कभी कभी नाम संक्षिप्त भी दिए जा सकते हैं, जैसे भीमसेन का नाम भीम भीम ही था बोलचाल में, युधिष्ठिर जब भी भीम को बुलाते थे भीमसेन को भीमसेन कहकर नहीं बुलाते थे, भीम बात सुनो इतना आवेश में मत आओ ऐसे करके युधिष्ठिर बोलते थे ना, तो वो भीम शब्द का प्रयोग करते थे। तो एक शक्यता ऐसी बनती है कि तिलोय पंडित्ती में जो पौमा पद्मा जो नाम है हो सकता है वो संक्षिप्त नाम हो, क्या ऐसा संभव नहीं है कि नागकुमारी का नाम भी पद्मावती हो और यक्षी का नाम भी पद्मावती हो, असंभव तो नहीं लगता क्योंकि एक जैसे नाम दो लोगों के पाए जाते हैं। अभी यहां जितने श्रोता हैं उन श्रोताओं में कई ऐसे होंगे जिनके नाम समान हो, कितने गौरव लोग इसको सुन रहे होंगे। और कितने अभिषेक लोग भी सुन रहे होंगे। तो क्या दो देवियों के नाम पद्मावती नहीं हो सकते? सिद्धांत था उसमें कोई बाधा नहीं आती और न ही व्यावहारिक रूप से कोई बाधा आती, तो भी चलो यदि वृषभ आचार्य महाराज ने यदि पद्मा नाम लिखा है तो अपन वती ना जोड़ करके पद्मा नाम स्वीकार कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। पर ये दोनों भिन्न भिन्न है। वो शासन यक्षी हैं, शासन यक्षी का क्या कार्य होता है? तो यशस तिलक चंपू ग्रंथ में आचार्य सोमदेव सूरी ने लिखा है, ताह शासन आदि रक्षार्थम कल्पिताह परमागमे। परमागम में अर्थात जिनेंद्र भगवान के वचनों में, ताह वे देवियां शासनादि रक्षार्थम कल्पिताह, शासन की अधिरक्षा के लिए कल्पित की गई हैं वे देवियां। कल्पित का अर्थ यहां पर व्यवस्थापित की गई है, जैसे अपन भक्तामर के 36वें काव्य में पढ़ते हैं ना, पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति। वहां पर ऐसा अर्थ नहीं लेना जो हिंदी में अपन कल्पित शब्द का अर्थ हिंदी में अलग है, मनः कल्पित, कपोल कल्पित। यहां जो कल्पित शब्द का अर्थ है, पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति, क्या अर्थ है? देवलोक कमलों की कल्पना करते हैं क्या, या कमलों को व्यवस्थित करते हैं भगवान के चरणों के नीचे और वहां आसपास? परिकल्पयंती का अर्थ होता है वो परित यानी सब ओर कल्पयंती, व्यवस्थापित करते हैं उन कमलों को। इसी तरह कल्पिता परमागमे, परमागम में उन शासन देवताओं को शासन की अधिरक्षा के लिए व्यवस्थित किया गया है, ऐसा अर्थ है उसका। और यदि फिर भी किसी के मन में संदेह हो तो वो धातु पाठावली में इस धातु को देख ले, लृप्त धातु होता है, उससे ये रूप बनते हैं। हम आपको थोड़े हिंट्स भी दे देते हैं साथ में, जो वैयाकरण हो या जो व्याकरण पढ़ने वाले विद्यार्थी हो वो शोध करके देख ले। इसका अर्थ क्या है? तो ये शासन के अधिरक्षक हैं। धर्णेन्द्र और पद्मावती शासन के अधिरक्षक नहीं है, ध्यान रखने की बात है। शासन के अधिरक्षक कौन है? तिरोय पंडित के अनुसार मातंग यक्ष और पद्मा यक्षी, ये शासन के अधिरक्षक हैं। और शासन के अधिरक्षक का अर्थ होता है शासन की अधिरक्षा। अधिरक्षा का अर्थ होता है दोनों प्रकार से रक्षा करने वाले, धर्मात्माओं की भी रक्षा करने वाले और आगम की भी रक्षा करने वाले, दोनों की रक्षा करने वाले। फिर धर्मात्माओं पर संकट क्यों आते हैं? सारे धर्मात्माओं के संकट ये दूर क्यों नहीं करते? तो इसका समाधान सरल है कि जब पार्श्वनाथ भगवान पर 6 दिन तक तो उपसर्ग निराबाध चलता रहा, उपसर्ग करने वाले को किसी ने रोका ही नहीं, 7वें दिन जाकर के उनका उपसर्ग टला, तो फिर वो तो तीर्थंकर थे, सामान्य मनुष्यों का क्या हाल होगा? यदि वैसे तीव्र कर्म उदय में आ जाए तो फिर कौन क्या कर सकता है? और पार्श्वनाथ भगवान के साथ तो ऐसा हुआ था कि पार्श्वनाथ भगवान ने करुणावश उन प्राणियों का उपकार किया था, तो उस उपकार का स्मरण करते हुए, कृतज्ञता गुण को प्रकट करते हुए उन्होंने आकर के भगवान के उपसर्ग का निवारण किया था, रक्षा की थी। जुगूह, समंतभद्र स्वामी ने जिस शब्द का प्रयोग किया है उस शब्द में धातु जो है वो रक्षावाचक धातु है, यानी धर्मेंद्र ने पार्श्वनाथ भगवान की रक्षा की। अब फिर आप निश्चय नए नहीं लगाना, हर जगह जहां जिस नए से कथन है उसी नए से ग्रहण करना। अपन के आचार्यों के वचनों में अपनी चतुराई को समाविष्ट न करते हुए उनके अभिप्राय को ग्रहण करेंगे तो कल्याण होगा। आपने ये सब सीखा कहां से? निश्चय ने, व्यवहार ने। आचार्यों की वाणी को पढ़कर ही तो सिखाना, तब आचार्यों के सामने क्या चतुराई दिखाना। वो जो कह रहे हैं, वो जिस नए से कह रहे हैं, जिस अभिप्राय से कह रहे हैं, उसको ग्रहण कर लेना। तो अब यहां पर अपन देखते हैं कि धर्णेन्द्र ने जो करना था वो किया, उसका वर्णन समंतभद्र स्वामी ने स्वयंभू स्तोत्र में भी कर दिया, लेकिन उसके बाद जो घटना हुई थी उसका वर्णन न होने के कारण, स्वयंभू स्तोत्र में उसका वर्णन न होने के कारण, यदि कोई ऐसा निर्णय कर ले कि आचार्य समंतभद्र स्वामी को इतना ही मान्य था कि धर्णेन्द्र ने उपसर्ग निवारण किया, ऐसा निर्णय करना न्याय संगत नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा निर्णय किया जाता है तो एक समस्या ये आती है कि गुणभद्र आचार्य महाराज और समंतभद्र आचार्य महाराज, इन दोनों में मतभेद सिद्ध होता है। समंतभद्र आचार्य केवल धर्णेन्द्र द्वारा उपसर्ग निवारण को मान्य करते हैं और गुणभद्र आचार्य धर्णेन्द्र और तत्पत्नी दो के द्वारा उपसर्ग निवारण को मान्य करते हैं, ऐसा निर्णय निकलता है। पर ऐसा निर्णय अपन कैसे निकाल सकते हैं? क्या गुणभद्र आचार्य मूल संघ के आचार्य नहीं थे? समंतभद्र आचार्य तो मूल संघ के आचार्य थे, वीरसेन आचार्य मूल संघ के आचार्य थे, उनके शिष्य जिनसेन आचार्य मूल संघ के आचार्य थे, तो क्या उनके शिष्य गुणभद्र आचार्य मूल संघ के आचार्य नहीं थे? उनने एक अपना नया मत स्थापित किया था कि कदापि नहीं, क्वचित अपि नहीं, कथंचित अपि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। दिगंबर आचार्यों की गौरवशाली श्रुत परंपरा के ये सारे आचार्य महान आचार्य थे, शीर्षस्थ आचार्य थे, इनके विषय में ऐसी कल्पना करना विनय का तो उल्लंघन है ही, साथ ही सम्यक दर्शन की सीमा रेखा का भी उल्लंघन है। इसलिए संदेह रहित मन से गुणभद्र आचार्य के वचन को प्रामाणिक मानते हुए, काल को प्रामाणिकता का आधार न्याय ग्रंथों में नहीं माना गया है। इसलिए जो कहते हैं कि समंतभद्र आचार्य प्राचीन थे इसलिए उनके कथन प्रामाणिक है, गुणभद्र आचार्य उत्तरवर्ती थे इसलिए उनके कथन को अपन उतना प्रामाणिक नहीं मान सकते जितना समंतभद्र आचार्य के वचन को मानते हैं, प्रामाणिकता का मापदंड काल नहीं है। चौथे काल में भी मिथ्या मत थे, तो चौथा काल तो पंचम काल से पहले का काल है, तो उसको प्रामाणिक मान लेंगे क्या? ऐसा संभव नहीं है। प्रामाणिकता के अलग मापदंड होते हैं, सत्य और असत्य की परीक्षा न्याय ग्रंथों से होती है। आज से 400 वर्ष उपरांत कोई आचार्य एक ग्रंथ रचना करेंगे, मान लो करेंगे, तो क्या उस ग्रंथ रचना को आप प्रामाणिक मान लेंगे? अपन जो पूर्वाचार्यों की श्रुत परंपरा का उल्लंघन न करके ग्रंथ रचना हुई है, वो आज से सैकड़ों वर्ष उपरांत भी क्यों ना हो, वह ग्रंथ जिनवाणी की श्रेणी में परम श्रद्धा के साथ वंदनीय, नमस्करणीय, पूजनीय माना जाएगा, प्रामाणिक माना जाएगा। इसलिए गुणभद्र आचार्य महाराज के वचनों का अपन अनादर करके अपना और दूसरों का अहित नहीं कर सकते। तो अब आप सुनने के लिए तैयार हैं? कि धर्णेंद्र की पत्नी ने क्या किया था? श्रद्धा पूर्वक सुनो तो हम सुनाते हैं। अगर किसी के अंदर संदेह हो तो अभी आप प्रश्न पूछ लो हमसे, हम आपको समय देते हैं। क्या उत्तर है आपका? आप तैयार हैं सुनने के लिए, हाँ या ना? गुणभद्र आचार्य वो आचार्य हैं जिनकी एक रचना है आत्मानुशासन। आत्मानुशासन ग्रंथ आचार्य शांति सागर महाराज और हमारे दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज का प्रिय ग्रंथ है। उनको आत्मानुशासन के अनेक काव्य कंठस्थ हैं। दोनों को कंठस्थ है, आचार्य विद्यासागर जी और आचार्य शांति सागर महाराज, दोनों को वो मान्य ग्रंथ था। तो आचार्य गुणभद्र स्वामी ने क्या लिखा है इस उपसर्ग के विषय में, आप जानना चाहो तो अपन आगे बढ़ते हैं। सुन रहे ठीक है? तत्पत्नी च फणा तते ही उपर्युच्चैः समुद्धृत्य तम भद्रम वज्रापतच्छिदम स्थिता। संस्कृत शब्द है, घबराने की बात नहीं है। एक एक शब्द का क्रमशः अपन अर्थ निकालते हैं। धर्णेंद्र की जो पत्नी थी, ग्रंथांतरों में जिनका नाम पद्मावती है, उत्तर पुराण में पद्मावती शब्द नहीं आया, और पद्मावती शब्द न आने के कारण यह निर्णय नहीं किया जा सकता कि धर्णेंद्र की पत्नी का नाम पद्मावती नहीं था। नहीं था यह निर्णय तभी संभव है जब आचार्य गुणभद्र जो नाम था वो बता दे। उन्होंने नाम तो नहीं बताया, और नाम न बताने के कारण अपन ये कैसे कह सकते हैं कि उनका ये नाम नहीं था? जो था वो पता नहीं हो तो कैसे बोल सकते हैं कि जो नहीं था वो नहीं था? समझ रहे? ऐसी बात है। तो ग्रंथांतरों में उनका नाम पद्मावती है। तो पद्मावती उन्हें तम भद्रम, उन भद्र को अर्थात पार्श्वनाथ भगवान को, फणात ततेह उपरी, अपने फणाओं की पंक्ति के ऊपर, उच्चैः समुद्धृत्य, ऊंचा उठाकर, ये एक काम किया पद्मावती ने। क्या काम किया? कि उसने अपने फणाओं की पंक्ति के ऊपर भगवान को ऊंचा उठा लिया। शब्द देखिए आप, समुद्धृत्य, भगवान जहां उसने इतनी वर्षा की थी कमट के जीव ने कि भगवान डूब गए थे, और धर्णेंद्र ने जो ऊपर फणा मंडप किया था उससे ऊपर जो भगवान पर जो गिर रहे थे पत्थर कंकड़ वगैरह, ओले वगैरह और जल आदि, वो रुक गए थे, लेकिन नीचे तो भगवान पानी में डूबे हुए थे। तो ऐसी स्थिति में कुछ और भी करना अपेक्षित था, वो कार्य पद्मावती ने किया। क्या किया? तम भद्रम तत्पत्नी फणा ततेह उपरी उच्चैः समुद्धृत्य, ऊपर ऊंचे उठाकर, फिर वज्रा तपच्छिदम यथा स्यात् तथा यथा भवत्येवम् क्रिया विशेषण करके स्थिता। पद्मावती स्थित हो गई। क्या करके? एक तो उसने भगवान को ऊपर उठा लिया, और उसके बाद वज्रा तपच्छिदम, वज्र का आतपच्छिद का अर्थ होता है छत्र, डायमंड का छत्र बना करके वो पद्मावती वहां स्थित हो गई। अब आप कल्पना करिए इस दृश्य की, कैसा दृश्य था। इस दृश्य में धर्णेंद्र भी वहीं स्थित है, पद्मावती भी स्थित है, और दोनों ने मिलकर उपसर्ग का निवारण किया है। धर्मेंद्र ने क्या किया, भगवान डूबे हुए हैं और उनके ऊपर फणा का आवरण कर दिया, उनकी रक्षा की, और पद्मावती ने नीचे से अपने फणाओं के ऊपर भगवान को ऊपर विराजमान करके समुद्रित्य वहां से बाहर निकाल दिया पानी से। कितनी गंभीर बात है ये। संस्कृत के एक एक शब्द का अर्थ आप संसार के किसी भी संस्कृत भाषी वैयाकरण से इन काव्यों के अर्थों को पूछ लेना। जो पुराण का हिंदी अनुवाद है उसमें किए हुए अर्थ में और इन श्लोकों के अर्थ में अंतर है। वहां पर कुछ और लिखा हुआ, हम आपको वो भी सुना देते हैं। आहार का समय हो रहा है पर फिर भी ये गंभीर विषय है तो इसको अधूरा नहीं छोड़ते। चलो देखिए हिंदी अनुवाद में क्या लिखा है। अवधि ज्ञान से यह उपसर्ग जानकर धर्णेन्द्र अपनी पत्नी के साथ पृथ्वी तल से बाहर निकला। उस समय वह धर्णेन्द्र जिस पर रत्न चमक रहे हैं ऐसे फणारूपी मंडप से सुशोभित था। धर्णेन्द्र ने भगवान को सब ओर से घेर कर अपने फणाओं के ऊपर उठा लिया। धर्णेन्द्र ने फणाओं के ऊपर उठा लिया, ये हिंदी अर्थ है। और उसकी पत्नी वज्रमय छत्र तान कर खड़ी हो गई। अपन एक काम कर सकते हैं कि इन दो काव्यों का अर्थ अपन जितने भी संस्कृत वेत्ता बड़े बड़े आचार्य आज हैं इस धरती पर उनके सामने रख करके उनसे पूछें कि इन दो काव्यों का हिंदी अर्थ क्या निकलता है। आप अनुग्रह करके बताइए हमें, हम जानना चाहते हैं, क्योंकि हिंदी में जो लिखा है उसके कारण बहुतों की धारणा वैसी बन चुकी है कि धर्णेन्द्र ने उठाया था भगवान को। और अभी अपन ने जो संस्कृत श्लोक मूल से पढ़े हैं उन श्लोकों में जो अर्थ निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि दूसरे श्लोक के प्रथम चरण तक धर्णेन्द्र का काम पूरा हो गया है और उसके बाद तत्पत्नी च वहां से अलग विवरण प्रारंभ हो गया है। और तत्पत्ति च फणा तते उपर्युच्चैः समुद्रित्य स्थिता। कितना सीधा साधा अर्थ है कि धर्णेन्द्र की पत्नी ने अपने फणा की तति, तति का अर्थ होता पंक्ति, अपने फणाओं की पंक्ति पर, फणाओं की पंक्ति के ऊपर ही, षष्ठी का बहुवचन है, एक वचन है, उच्चैः समुद्रित्य ऊंचा उठाकर वज्रा तपच्छिदम स्थिता। अपन ऐसा उल्टा सीधा अन्वय कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल सीधा स्पष्ट अर्थ निकल रहा है फिर भी हम आपको समय देते हैं, आप सब विद्वानों से पूछ लीजिए, सब आचार्यों से पूछ लीजिए कि इस काव्य का अर्थ क्या निकलता है। ज्ञानमती माता जी से पूछवा लीजिए, आचार्य विद्यासागर महाराज हमारे दीक्षा शिक्षा गुरु महाराज हैं उनसे पूछवा लीजिए। हाँ जी आवाज कट रही है। हाँ तो ये उपसर्ग का वर्णन अपन ने अभी दो आचार्यों के मुखारविंद से सुना है और समझा है। तो कितनी अलग जानकारी अपने को मिल रही है। हमने कई दिनों पहले आपसे कहा था कि हम इस पर शोध कर रहे हैं और जब तक हम अपने अंदर हमारा निर्णय डावाडोल हो तब तक हम आपको नहीं बताएंगे। आज हम आपके सामने स्पष्ट रूप से संस्कृत काव्यों के साथ इसका अर्थ बता रहे हैं और आपको हम ये भी कह रहे हैं कि आप सबसे पूछ के देख लो कि इन दो काव्यों का अर्थ क्या निकलता है। काव्य पर्व क्रमांक 73 काव्य क्रमांक 139 और 140, 139 और 140, इन दो काव्यों का अर्थ आप कहीं भी किसी से भी पूछ लो। आड़ा टेढ़ा अर्थ निकालने से कोई सार नहीं निकलता, केवल हानि होती है। तो ये बात आज की थी। ओम नमो रहते भगवते श्रीमते परम भट्टारकाय महादेवाधिदेवाय तीर्थकृते जिनेन्द्र देवाय अनर्घ्यपद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामी इति स्वाहा। ओम ऐं अर्हं सर्वज्ञ समुत्पन्नायै दिव्यध्वनिरूपायै स्याद्वादकेतनायै अंगांग बाह्य भावितायै केवल ज्ञान कार्य कारणायै केवल श्रुत केवल प्रज्ञप्तायै सुविशुद्ध सम्यक दर्शन तिलकायै सम्यक चारित्र वस्त्राभरणायै जगन्मात्र स्वरूपायै भगवती जिनवाणी सरस्वती देव्यै ह्रीं श्रीं नमः। अनर्घ्यपद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रूं ह्रौं ह्रः आचार्य उपाध्याय सर्वसाधुभ्यः अनर्घ्यपद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। जैनं जयतु शासनम्।